تفسير: يا أيها الذين آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لانے والوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس ایمان ہے، تمہارا ایمان جیتا جاگتا ہے، تمہارا ایمان دھڑکتا ہے، جیسے تمہارے سینوں میں دل دھڑکتا ہے ایسے تمہارے دلوں میں ایمان بھی ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا کرو؟ انفقو من طیبات ما کسبتم، خرچ کر دو جو پاک ہے اور جو حلال ہے اور عمدہ ہے جو کمائیاں بھی تم نے کی ہیں. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے. تو اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں کہ اے ایمان لانے والو، جو مال بھی تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کر دو. برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ آیت ہم گروہ انصار کے حق میں نازل ہوئی، ہم کھجوروں والے تھے، ہم میں سے ہر ایک اپنی قلت اور کثرت کے مطابق کھجوریں لے کر آتا، کوئی ایک خوشہ کوئی دو خوشے، اور انہیں مسجد میں لٹکا دیتا. اہل صفہ کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا، ان میں سے جب کوئی آتا تو عصا سے خوشے کو ضرب لگاتا تو اس سے تر اور خشک کھجوریں گر پڑتی جنہیں وہ کھا لیتا، اور جنہیں نیکی کی رغبت نہ ہوتی تھی وہ ایسے خوشے لاتا جن میں ناقص اور ردی کھجوریں ہوتی، اور ٹوٹے پھوٹے خوشے لے کر آتے. تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. تو اب یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ عمدہ چیز ہونی چاہیے، طیبات، زمین میں سے یا تمہاری کمائی میں سے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو عمدہ چیز ہونی چاہیے، ردی اور نکمی نہیں ہونی چاہیے. اور ساتھ ہی دوسری بات کی کہ پاک ہونی چاہیے. تو یہ بات کے اندر ہی یہ چیز آتی ہے کہ وہ پاک بھی ہونی چاہیے. ابو الملیح اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی، اور نہ وہ خیرات قبول ہوتی ہے جو خیانت کے مال میں سے کی جائے. تو مراد کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اچھی سے اچھی اور پاک چیز کا انتخاب کرنا چاہیے، اور شریعت کی روح سے وہ چیز پاک ہے جو حلال بھی ہو اور جائز ہو، یعنی جس کمائی سے وہ خریدی گئی ہو وہ بھی حلال ہونی چاہیے. کوئی چور بازاری، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، رشوت، غبن، دھوکا، لوٹ مار، ڈاکہ زنی، کچھ بھی اس طرح کے کاموں سے اگر کوئی دولت کماتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ میں خیرات کروں گا، تو یہ مال جب پاک ہی نہیں ہے تو پھر اس سے جو ہے وہ خیرات کیسے قبول ہوگی، اس کا اجر پھر کیسے ملے گا. پھر فرمایا: وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے پاس پیسے ہیں، کسب تم میں پیسے آگے ہے نا، کسب تم میں پیسے آگے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسب تم جو ہے اس سے مراد اولاد بھی ہے. اولاد کہتے ہیں کہ والد کا اپنی بیٹے کی کمائی میں سے کھانا اور والدین کا کھانا یہ سب جائز ہے، کیونکہ وہ اولاد جو ہے وہ والدین کا کسب ہے، کمائی ہے ان کی. تمہاری اولاد تمہاری کمائی کا ایک پاکیزہ حصہ ہے، بس تم اپنی اولاد کی کمائی سے مزے سے کھاؤ. تو جو بھی کمائی ہے اس میں سے بھی جیسے زکوٰۃ، خیرات، صدقہ کرنا چاہیے، اور زمین کی جو پیداوار ہے اس میں سے بھی خرچہ جو ہے، جو بھی زمین میں سے نکلے تو اپنے ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ کے راستے میں بھی دینا چاہیے. تو دور نبی کا دور کیسا تھا کہ مکہ کے لوگ تاجر تھے، مدینہ کے لوگ جو تھے وہ زراعت پیشہ تھے. تو کسب تم میں تاجر بھی آگے، اخرجنا لکم من الارضی میں زمیندار بھی آگے. تو اس سے مراد اب یہ نہیں ہے کہ کسی کی فیکٹریاں تو وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں. ہر طرح کے لوگ، یعنی جس طرح کی بھی کمائی ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں جو ہے تم خرچ کرو. حضرت جو ہے وہ حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں ان تمام چیزوں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے تھے جنہیں ہم خرید و فروخت کے لیے تیار کرتے تھے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے جب دی جائے تو کیسے دینی چاہیے، یعنی عمدہ چیز ہونی چاہیے اور اچھی چیز ہونی چاہیے. और ये भी नहीं है कि हर उम्दा ही हो, मतलब ना बहुत खराब हो ना बहुत अच्छी हो, दरमियानी। ये भी हमें तालीमात मिलती हैं कि जब हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बनाकर भेजा, तो जकात की वसूली के बारे में ये हदायत दी कि लोगों के उम्दा उम्दा माल लेने से परहेज करना। मसलन अगर किताबों की दुकान से जकात वसूल करना हो तो ये नहीं किया जाए कि किसी बेहतरीन मुसन्नफ की सारी किताबें मुंतखब कर ली जाएं जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा मांग हो। जकात में मिला जुला माल होना चाहिए, दरमियानी किस्म का। और अगर जकात अदा करने वाला खुद जकात निकालना चाहे तो वो ये ना करे कि जो माल फरोख नहीं हो रहा उसी को जकात में दे दे, है ना। हर तरह का माल दे, दरमियाने दर्जे का भी, बहुत अच्छा भी, तो मिला जुला सा। अच्छा, फिर इसमें ये भी है कि बाज दुकानें ऐसी होती हैं कि जिसका अच्छा खासा कारोबार है मगर दुकान में माल तो या बराए नाम होता है या होता ही नहीं है। मसलन सब्जी फरोश है, फल फरोश है, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, गोश्त बेचने वाला, होटल, अखबार वगैरह जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, इनकी दुकानें हैं, तो माल तो अंदर है ही नहीं। तो अब इसका ये मतलब है कि ये नहीं कि अब उनको नहीं देना जकात या कुछ, बल्कि क्या है कि जो भी उनकी नफा होगा ना उनकी तिजारत का या बिजनेस का या माल का, तो उसमें 2.5% की शरह से या 40वां हिस्सा यानी जमीन वगैरह का या दूसरा है तो उनको देना होगा। इसी तरह कुछ लोग जो है गवाले होते हैं, दूध बेचते हैं या गुज्जर वगैरह, उनकी भी दुकानें नहीं होती, एक लकड़ी का तख्ता सा होता है और फिर वो काफी तादाद में गाय भैंसे उनकी होती हैं, तो वो क्या करें। तो उनको भी अपने सालाना नफे पर जो है वो जकात देनी है। इसी तरह डेयरी फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, मछली फार्म है, उनको भी यही करना है। इसी तरह बाज दुकानें और मकान किराए के लिए लोग ले लेते हैं, है ना, या फिर जो है वो टैक्सियां हैं, गाड़ियां हैं, तो वो क्या करेंगे कि उस टैक्सी पर तो नहीं जकात, बल्कि क्या है कि टैक्सी की जो आमदन है उस पर है, मकान पर नहीं, बल्कि मकान से जो किराया आ रहा है साल गुजरने पर फिर उस पर जो है वो ज़कात अदा करनी होगी। तो इस तरह की बहुत सी और भी बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए कि हमें जब देना है तो इंसान फिर उसके तरीके अंदाज जो है वो सीख लेता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तयम्ममुल खबीसा, कि तुम जो है जब अल्लाह के राह में देने लगो तो क्या करो कि बुरी चीज का इरादा ना करो, ना वो नापाक होनी चाहिए ना वो रद्दी होनी चाहिए। मिनहु तुनफिकूना, कि जो कुछ तुम जो है वो खर्च करते हो, यानी रद्दी और नापाक चीजें जो हैं वो कैसी होती हैं कि वल्लस तुम बे आखिजी ही, कि तुम भी तो उसको लेना पसंद नहीं करते, इल्ला अंतुख मेदूफी, इल्ला ये कि तुम जो है वो उसको कबूल करने में चशमपोशी कर जाओ, अगमाज बरत जाओ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जामे तिर्मिजी में मिलती है कि आप जिसके आखिर में आपने फरमाया कि जो इस शख्स ने दिया है अगर ऐसा ही हदिया तुम में से कोई उसे देता तो इसे कभी ना लेता मगर चश्मपोशी करके या शर्म की वजह से। तो इस हदीस के रावी बयान करते हैं कि इसके बाद हमारा ये हाल हो गया कि जो कुछ हमारे पास आता था हम होता था उसमें से बेहतरीन चीज चुन चुन कर हम लाते थे। इसी तरह यानी ये चीजें हमें क्या पता चलती हैं कि क्या करना चाहिए। सुनने इब्ने माजा में है कि किसी शख्स ने मस्जिद नबी में खजूरों का एक खोशा या ज्यादा खोशे लाकर लटका दिए ताकि मोहताज खाएं, खजूरें अच्छी ना थी। इस पर हुजूर ने फरमाया अगर ये खैरात करने वाला शख्स चाहता तो इससे बेहतर खैरात कर देता। नीज़ आपने फरमाया ये खैरात करने वाला कयामत के दिन खराब खजूरें ही खाएगा। तो हमें इस सारी बात से फिर क्या पता चलता है कि बुरी चीज नहीं होनी चाहिए, नकम्मी चीज नहीं होनी चाहिए, और जब अल्लाह की राह में देने की बात आए तो अच्छी चीज जो है हम दें। फिर फरमाया वअलमू अन अल्लाह गनीउन हमीद, के तुम्हें जान लेना चाहिए कि अल्लाह जो है वो गनी है और खुद काबिले तारीफ है, अल्लाह ताला की जात जो है वो बेनियाज है और बेहतरीन सिफात से मुत्तसिफ है। तो क्या बात है, अल्लाह की सिफात बहुत अच्छी है, अल्लाह बुरी सिफात को पसंद नहीं करता, अल्लाह बुरे इन्फाक को भी पसंद नहीं करता, अल्लाह बुरे अमलों को भी पसंद नहीं करता। और अल्लाह के अमल कैसे हैं, दुनिया शिर्क करती है, दुनिया अल्लाह की नाफरमानियां करती है, गुनाह करती है, गुनाहों की गठरियां हैं, लेकिन अल्लाह ताला क्या करते हैं कि अल्लाह की बख्शिश के दरिया जो हैं वो हर सू बह रहे हैं। तो किस तरह मुमकिन है कि फिर तुम लोग जो है वो जर्फ लोगों की तरह, कम हौसला लोगों की तरह और पस्त इखलाक लोगों की तरह जो है ना, तुम अल्लाह के रास्ते में इंफाक करो। तो अल्लाह फिर ना बुरे लोगों को पसंद करता है ना बुरे अमल को पसंद करता है। फिर फरमाया अश्शैतान यअदुकुम अल-फक्रा व यअमुरुकुम बिल-फहशा, ये तो शैतान है तुम्हें मुफलिसी से डराता है और शर्मनाक तर्ज अमल इख्तियार करने की तरगीब देता है। शैतान है ना जो डराता है कि तुम अगर दोगे तुम्हारे बच्चों का क्या बनेगा, तुम्हारा घर कैसे बनेगा, तुम जेवर का दूसरा सेट कैसे बनाओगी, तुम अपनी एक और चीज जो भी सेल लगी हुई उसमें से शॉपिंग कैसे करोगी, अल्लाह के रास्ते में दोगी या अपनी ये जरूरियात जिंदगी जो है वो पूरी करोगी। तो शैतान जो है वो क्या करता है, कदम कदम पर इंसान को नेकी करने से रोकता है, उसके कदमों की जंजीर बन जाता है, उसको उसके दिल की धड़कन तेज कर देता है। तो कभी तो उसको गरीब गुर्बत का खौफ दिलाता है, कभी कहता है कि तुम ऐश परस्ती नहीं कर सकते, तुम मजे नहीं कर सकते। तो फिर क्या करता है, क्योंकि उसका काम ही है शैतान का कि वो इंसान को इबादत से रोके और वो इंसान को तरह तरह के वसवसे जो है वो दे, क्योंकि वो है ही खन्नास, वो है ही वसवास। जैसे वसवसा जो होता है ना, इसका वजन ही ऐसा है कि बार बार वसवसा देना, जलजला, इस वजन पर जो भी वर्ड आते हैं ना उसके अंदर तकरार पाई जाती है। जलजला भी झटके के बाद झटका, वसवसा भी वसवसे के बाद वसवसा, छोड़ नहीं देता। तो शैतान तो ऐसा है। और दूसरी तरफ वो क्या काम करता है, फहश, वो तुम्हें हुक्म देता है कि फहश काम करो। तो ये फहश काम है, ये अच्छी चीज नहीं है कि एक तरफ तो मुसलमान जो है उनको जरूरत है ना, और दूसरी तरफ जो है वो तुम्हें ये कहता है कि तुम खर्च ही ना करो, बखील बन जाओ। एक तो इसके ये मानी है, दूसरे से मुराद ये है कि नेकी के कामों में तो खर्च ना किया जाए, और जो दूसरे काम है, अयाशी है, मैनोशी है, सिनेमा है और असराफ है, दिखावे के काम है, उस पर कहता है कि तुम खर्च करो। तो ये भी क्या है कि ये भी फौश काम है, असराफ का, गलत। मतलब शादी पर दिखाने के लिए कितना खर्च करते हैं, दिखावे पे अफतारियां नेकी का काम कर रहे हैं पर दिखावे की अफतारियां, कुर्बानी करनी है अल्लाह के रास्ते में तो धूम मची है कि हमारा बकरा तो 10,000 का आया, 15,000 का आया, भाई 2 का आया या 10 का आया, अल्लाह को तुम्हारा खून और तुम्हारे पैसे और तुम्हारी खालें और गोश्त नहीं पहुंचता, अल्लाह को तो तुम्हारी नीयत पहुंचती है। तो असल बात क्या है कि शैतान जो है तुम्हें मुफलिसी से डराता है और तुम्हें कहता है कि तुम ऐसे काम करो जो कि अल्लाह को पसंद नहीं है। ये शैतान ही है जो कि इंसान जो है उसको नेकी के कामों से रोक देता है। फिर फरमाया वल्लाहु यअदुकुम मग़फ़िरतन मिन्हु व फ़ज़्ला, और अल्लाह तुम्हें वादा देता है, अल्लाह तुम्हें यकीन दिलाता है, उम्मीद दिलाता है अपनी बख्शिश की और अपनी फजल की, अपनी रहमत की, अपनी अनायात की। तो फकर के मुकाबले में शैतान तो डराता है ना, गरीब हो जाओगे, अल्लाह कहता है कि नहीं, तुम खर्च करोगे तो मेरी बख्शिश तुम्हें आकर ढांप लेगी। शैतान तो कहता है ना कि तुम जो है बुराई के कामों पे खर्च करो, तो अल्लाह ताला तुम्हें ये यकीन दिलाता है, ये उम्मीद दिलाता है कि नहीं, तुम खर्च करोगे नेकी के कामों पे तो अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फजल जो है वो हर तरफ से तुम्हें आकर जो है वो तुम्हारा दामन जो है वो पकड़ लेगा, यानी अल्लाह की रहमत की बारिश जो है वो तुम पर होगी। तो असल बात जो है वो क्या है कि हमें शैतान की कभी शक्ल तो हमने नहीं देखी, लेकिन कहना उसका बड़ा मानते हैं, ये कैसा है आका, ये कैसा है हाकिम, ये कैसा है मालिक, हमने कैसे अपना दिल दिमाग, अपना जान, अपनी जान और अपना माल उसके सुपुर्द कर दिया, अनदेखे उसका इतना यकीन करते हैं, अनदेखे उसको इतना फॉलो करते हैं, है ना। और अनदेखा रब जिस पर हम गैब पर ईमान लाते हैं वो ये कहता है कि जब तुम मेरे रास्ते में दोगे तो गुनाह माफ होंगे, तुम्हारे माल में तरक्की होगी। फमान फक्तु मिन शैइन फहुवा युक्लिफु वहुवा खैरुर राज़िकीन, कि जो कुछ तुम अल्लाह के राह में खर्च करोगे अल्लाह तुम्हें इसका निमुल बदल अता करेगा। वमान फक्तु मिन शैइन फहुवा युक्लिफुहु, तो अल्लाह क्या करेगा कि तुम्हें उससे ज्यादा अच्छा निमुल बदल देगा। वहुवा खैरुर राज़िकीन, और सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ہر روز صبح کے وقت دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اس طرح دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کر، اور دوسرا اس طرح بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہاتھ روکنے والے کو تلف کر دے، برباد کر دے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے، اس سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کریں تو پھر دل جو ہے وہ تنگ نہ کریں۔ اور ہمیں یہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے جس ہاتھ سے دے رہے ہوتے ہیں، جس ہاتھ سے اللہ دیتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ واسع علیم، اللہ تو بڑی ہی وسعت والا ہے اور بڑا ہی علم والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت دے دیتا ہے، یعنی مال کی بجائے نیکیوں سے محبت دے دیتا ہے، دنیا بجائے دنیا کی بجائے آخرت کی محبت دے دیتا ہے، یہ ہے حکمت، ہے نا۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو علم ہوتا ہے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، مال ہو اور اس کو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جس کو یہ حکیمانہ بات سمجھ آ جائے تو اس کی وہ نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دو ہی لوگ ہیں جن پر رش کرنا جائز ہے، ایک جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو اور اس کو سکھانے میں پھیلانے میں نہ دن دیکھے نہ رات، دوسرا جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس کو اللہ کی راہ میں دینے میں نہ دن دیکھے نہ رات۔ ان پر آپ رش کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی دے کہ ہم بھی اس کی طرح جو ہے نا وہ خرچ کریں۔ تو جس کو حکمت دی گئی، کس کو حکمت ملتی ہے، وَمَن يُوتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ حکمت سے مراد کیا، یعنی وہ وزڈم، وہ کامن سینس، وہ صحیح بصیرت، وہ قوت فیصلہ جس کو مل گئی اس کو بڑی دولت مل گئی۔ تو شیطان تو ہمیشہ یہ کہے گا کہ تم دو گے تو فقیر بن جاؤ گے، سنبھال کے رکھو دولت کو، لیکن جو حکیم، جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس ایمان ہے، وہ یہ چاہے گا کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے تاکہ اللہ بھی اس کو دل کھول کر عطا کرے۔ اور دنیا کی زندگی تو ہے ہی چند دنوں کی، ہے نا، دنیا کی زندگی پوری زندگی تو نہیں ہے، یہ اصل زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ دنیا مزرۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے کہ اس چھوٹی سی زندگی کو، اس چھوٹی سی دنیا کو بڑی دنیا کے لیے، بڑی زندگی کے لیے قربان کر دینا چاہیے۔ اس مختصر سی زندگی سے فائدہ اٹھا کر ہمیشہ کی زندگی میں خوشحالی کا انتظام کرنا چاہیے۔ تو جس کو حکمت ملی اس کو خیر کثیر مل گئی، بڑی بات ہے، جس کو سوجھ بوجھ مل گئی۔ ہم تو اسی کو عقل مند سمجھتے ہیں نا جو دولت جمع کرتا ہے، جو کئی گھر بناتا ہے اور کئی گھروں کو کرائے پر چڑھاتا ہے، ہے نا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے راستے میں بھی دے۔ تو ہمیں صحابہ اور صحابیات کے بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے تھے، اور اس طرح دیتے تھے، نہ دن دیکھتے تھے اور نہ رات دیکھتے تھے، نہ صبح دیکھتے تھے اور نہ شام دیکھتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ ان باتوں سے صرف وہی سبق لیتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ تو عقل مند کون ہے، جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے بات کہ عقل مند کے اللہ کی نظروں میں بننا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی نظروں میں بننا چاہیے۔ پھر فرمایا وما انفقتم من نفقت او نظرتم من نظر فإن اللہ يعلم، کہ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو تو کیا ہے، یعنی جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، تم اچھا کر رہے ہو برا کر رہے ہو، طیبات میں سے کر رہے ہو خبیثات میں سے کر رہے ہو، مشکل میں کر رہے ہو تنگی اٹھا کر کر رہے ہو، اپنے اوپر جو ہے وہ تنگی اٹھا کر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہو، یہ سارے تمہارے عمل کیسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے جو بھی تم نیکی کر رہے ہو، تو سوچو تو صحیح کہ پھر اللہ تمہیں اس کا جو ہے وہ کتنا اجر دے گا اور کیسا اجر دے گا۔ اور صحابہ کرام جو تھے ان کی کیا حالت تھی کہ جب اس طرح کی آیات نازل ہوتی تھی کہ جو کچھ بھی تم کرو گے اور اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ ہے، تو وہ کیسے خرچ کرتے تھے، उनका खर्च करने का अंदाज इतना खूबसूरत था, इतना अच्छा था कि हमेशा वो ये चाहते थे कि दूसरे को तरजीह दें। मुस्तदरक हाकिम में है कि एक सहाबी को किसी ने बकरी की सीधी तोहफा में भजवाई, उन्होंने ये सोच करके फलां शख्स मुझसे ज्यादा हाजतमंद है इसके यहाँ भेज दी। इसने यही सोचकर तीसरे आदमी के पास भेजी। इसी तरह 7 घरों का चक्कर लगाने के बाद वो सीधी पहले सहाबी के घर पहुंच गई। तो ये था उनके अंदर कि कैसे दूसरों को अपने ऊपर जो है ना वो तरजीह देनी है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो, तो क्या अल्लाह को ये नहीं पता है ना। फिर फरमाया औ नजर तुम में नजरें, और जो नजर भी तुमने मानी हो, फइन्नल्लाह यालमु, अल्लाह को उसका इल्म है। तो नजर से मुराद क्या है कि इंसान जो है अपनी किसी उम्मीद के पूरा होने पर कोई ये सोच ले कि मैं इतना पैसे खुदा की राह में दूंगी, इतने नफल पढ़ूंगी, उमरा करूंगी, कुछ भी नेकी के काम की अपने ऊपर मन्नत मान ले, और वो उसके जिम्मे कर्ज नहीं थी, जिम्मेदारी नहीं थी उसकी, लेकिन अपने ऊपर उसने खुद से मान ली। और ये हलाल और जायज होनी चाहिए, ऐसी मन्नतें नहीं माननी चाहिए ऐसी नजरें के फलां पीर के दरगाह पर या फलां के नाम के मुर्गी या मुर्गा या बकरा या इतने दाने या जमीन का हिस्सा। तो ये चीज सही, ये ऐसी नहीं हो, मतलब सही से अल्लाह के नाम की मानी जाए मन्नत, तो ये जायज है। और वो काम जब पूरा हो जाए तो उसको फिर अदा कर देना चाहिए, अल्लाह के लिए हो, अल्लाह की अताअत में हो, और जब काम पूरा हो जाए तो उसको जब पूरा करेंगे हम तो फिर उसका अजर मिलेगा। क्योंकि मन्नत मानना ये वादा है एक तरह का, और जब वादा किया जाए तो वादे को पूरा करना चाहिए, और अगर वादा कर लिया और फिर उसको पूरा ना किया तो फिर ऐसा ना हो कि उसका जो है वो गुनाह हो जाए। तो वैसे तो मन्नत मानने को मुस्तहसन नहीं करार दिया गया कि कोई इस तरह की मन्नत माने जो शरीय लिहाज से ठीक ना हो, या ये कि मैं पैदल चलकर जो है वो खाना काबा का हज करूंगी या उमरा करूंगी, या ये कि मैं जो है मेरा काम ये जब तक ना हो जाए तो मैं खाऊं पीऊंगी नहीं, या और भी इस तरह की बहुत सी मन्नतें जो जिसमें अल्लाह ताला नहीं चाहते कि खाम खा अपने आप को मुश्किल में तकलीफ में डाला जाए, तो ये चीजें भी पसंदीदा नहीं है। तो जो भी खर्च करेंगे अच्छा करेंगे या बुरा, और जो भी नजर मानेंगे, और तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह को इसका इल्म है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और वो लोग जो के जुल्म करते हैं ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं है। तो यहां पर ये क्यों कहा, जालिम क्यों कहा? हमने तो ये पढ़ा था कि जालिम मुशरिक को कहते हैं, शिर्क करना जो किसी को किसी का हक ना दे। तो दरअसल इससे मुराद ये है कि अगर नीयत ही अल्लाह के लिए ना हो तो ये भी तो शिर्क है ना। खर्च तो किया, नीयत ही अल्लाह की रजा नहीं थी, तो जो भी खर्च किया, जो भी नजर मानी, तो दरअसल ये तो तुमने जुल्म किया, शैतानी राहों पर खर्च किया अल्लाह को छोड़कर। अल्लाह को छोड़कर दूसरों की नजरें मान ली तो अल्लाह की सजा से लोगों तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, ऐसे जालिमों का जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों के लिए जो है वो काम करते हैं तो फायदे की बजाय उनको जो है वो नुकसान ही है। तो असल चीज क्या है कि जो काम भी करें अल्लाह के लिए करें। फिर फरमाया इन तुबदु सदकाति फनिअम्मा हिया व इन तुखफूहा वतूतूहल फुकरा फहुवा खैरुल लकुम। अब यहां पे तरीका बताया जा रहा है और कि अगर सदकात अलानिया दो तो ये भी अच्छा है, लेकिन अगर छुपाकर हाजतमंदों को दो तो तुम्हारे हक में ये ज्यादा बेहतर है। तो अब ये बात जो है इसकी तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है कि जब अल्लाह के रास्ते में तुम दो तो तुम्हारे देने का अंदाज क्या होना चाहिए। तो पहली चीज जो बताई वो क्या है कि अलानिया दो। अलानिया दो तो भी अच्छा है, और बाज़ुकात ऐसा होता है कि जरूरत होती है कि अलानिया दिया जाए ताकि लोगों के अंदर नेकी की तरगीब हो, ताकि लोग जो हैं वो देखकर और बहुत से लोग भी जो हैं वो अल्लाह के रास्ते में देने लग जाएं। तो बहुत से लोगों की ये राय है कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि जो सदका फर्ज है ना उसको अलानिया दिया जाए, वो अफजल है, और जो सदका फर्ज के अलावा है उसका इख्फा ज्यादा बेहतर है। यही उसूल तमाम आमाल के लिए हैं। फर्ज नमाजें अलानिया पढ़नी चाहिए देखकर लोग पढ़ें, ज़कात अलानिया देनी चाहिए देखकर लोग दें, और فرائض کا اعلانیہ انجام دینا فضیلت رکھتا ہے، اور نوافل کو چھپا کر ادا کرنا، جیسے تہجد کی نماز ہے اس کو چھپا کر ادا کیا جائے، اس کا ذکر نہ کیا جائے، اسی طرح انفاق اور صدقہ جو ہم کرتے ہیں تو اس کو بھی چھپا کر کیا جائے، کیونکہ عام طور پر جب ہم اعلانیہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے، مثلا جیسے اب زلزلہ کے لیے فنڈ جمع کر رہے تھے تو اعلانیہ مصیبت تھی، اعلانیہ اگر کر رہے ہو سکتا ہے دیکھ کر اور لوگ بھی کریں، ہے نا، یا جہاد وغیرہ کے موقع پر، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اعلانیہ، غزوہ تبوک کے موقع پر اعلانیہ ہی تو تھا، تبھی تو سارے لوگ لا رہے تھے، اور ہمیں حدیث سے ملتا بھی ہے، بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں. تو لیکن ساتھ ہی یہ بات کہی کہ وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر تم اس کو چھپا کر کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم فقیروں کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ زیادہ بہتر ہے. یہ خاص بات ہے کہ غریبوں کو، حاجت مندوں کو اگر تم دیتے ہو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ غریبوں کو اگر ہم پوشیدہ دیتے ہیں تو ایک تو یہ کہ ریا کے فتنے سے محفوظ، نمائش نہیں ہونی چاہیے. دوسری جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ غریب بھی تو خوددار ہوتے ہیں، ان کی بھی تو ایک خودی ہوتی ہے، ان کی بھی تو ایک انا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ تم جب دو تو ان کی جو خودداری ہے اس کو تم جو ہے خودداری کو ختم کر دو، یا یہ کہ ان کی جو عزت ہے اس کو دنیا میں بے عزت کر دو. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کی خودداری کی لاج قائم رہ سکے. تو اصل بات کیا ہے کہ ہمیں جو خفیہ نیکیاں ہیں، اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ ہمیں وہ جو 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، اس میں سے ایک شخص کون سا ہے، وہ کون سا شخص ہے کہ جس کو عرش کے سائے کے نیچے جو ہے وہ جگہ ملے گی؟ 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، ایک ہاتھ سے وہ اس طرح دیتا ہے کہ دوسرے ہاتھ کو جو ہے نا اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس نے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں کیا دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. تو دائیں ہاتھ نے دیا اور دائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ اس نے کیا اللہ کے راستے میں دیا. اور مجھے ایک حدیث بڑی پسند ہے، کہتے ہیں کہ خفیہ صدقے کی جو فضیلت ہے، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھانے لگی، وہ ہلنے لگی، وہ ہچکولے کھاتی تھی، پھر اللہ نے پہاڑ پیدا کیے اور کہا کہ زمین کو تھامے رہو. یعنی زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی، پھر اللہ نے پہاڑ پیدا کیا اور کہا کہ اسے تھامے رہو، چنانچہ وہ ٹھہر گئی. تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا، وہ کہنے لگے کہ پروردگار، تیری مخلوق میں کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں لوہا. فرشتے کہنے لگے پروردگار کوئی چیز لوہے سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں آگ. پھر وہ کہنے لگے کوئی چیز آگ سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں پانی. وہ کہنے لگے کوئی چیز پانی سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں ہوا. پھر وہ کہنے لگے کوئی چیز ہوا سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں وہ ہاتھ، جو آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو خبر بھی نہ ہو. کتنی خوبصورت ہے یہ حدیث نا، کہ یعنی دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو خبر بھی نہ ہو، تو ایسے جو ہیں وہ ہر ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ زیادہ سخت ہیں. اس حدیث کو مسند احمد نے، ترمذی نے جو ہے وہ روایت کیا ہے. تو آپ اس لمبی سی حدیث کو لکھیں گے کیسے؟ کہ زمین پیدا ہوئی تو ہلنے لگی، زمین پلس اس کا ہلنا، پھر یہ کہ پلس پہاڑ، پھر پلس جو ہے یعنی اب فرشتے تو حیران ہے کہ پہاڑ اتنی مضبوط چیز ہے زمین کو روک دیا، پلس لوہا، یعنی اس سے بھی زیادہ، کیونکہ لوہے سے پہاڑ کاٹے جا سکتے ہیں، پھر پلس آگ، آگ ہی لوہے کو پگھلاتی ہے نا، پھر پلس آگ کے ساتھ آپ کیا کریں گی، پانی، پانی بجھا دیتا آگ کو، پلس ہوا، पानी का रुख हवाएं बदल देती हैं, और सबसे ज्यादा मजबूत तो इंसान है ना, और खास तौर पे उसका वो हाथ जो सबका खैरात करता है दाएं हाथ से कि बाएं को खबर भी नहीं होती। तो ऐसे लोग अल्लाह को अपनी मखलूक में सबसे ज्यादा पसंद है। तो ये है कि अगर तुम सदका इस तरह करते तो तुम्हारे हक में जो है वो ज्यादा बेहतर है। फिर फरमाया वयुकफिरु अनकुम मिन सय्यातिकुम, और अल्लाह ताला इस तरह से तुम्हारी बुराइयां तुमसे मिटा देगा कि जब इंसान जो है अल्लाह के रास्ते में देता है, इंफाक करता है, तो अल्लाह बुराइयों को मिटा देता है। इससे एक बात तो ये पता चलती है कि एलानिया नेकी करो, सदका करो और खुफिया करो, तो इससे बुराइयां मिट जाती हैं। दूसरी बात ये पता चलती है, बाज लोग कहते हैं कि खास तौर पे खुफिया नेकी करने से मुश्किल आसान हो जाती है, गुनाह मिट जाते हैं। वयुकफ्फिरु अनकुम मिन सय्यातिकुम, कि अल्लाह तुम्हारी बुराइयां तुमसे मिटा देता है। वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को बहरहाल उसकी जो है वो खबर है। कि इंसान जो है दिखावे के लिए कर रहा है कि अल्लाह के लिए कर रहा है, और एलानिया अगर कर रहा है तो इसलिए कर रहा है कि लोगों को तरगीब हो, या ये कि इसलिए कर रहा है कि लोग शाबाश दें। और इसी तरह जो है वो जो खुफिया करता है तो इसका ये मतलब है कि खास तौर पर जो है वो अल्लाह के लिए जो है वो करता है। यानी जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह तो वो तुम्हारे मामलात की, तुम्हारे अमाल की जो है वो खबर है। तो फायदा क्या होगा, पूरी पिछली बात को अगर आप देखें आयत 270 को और यहां तक, फहुआ खैरुल्लाकुम, तो खैरुल्लाकुम जो है ना युकफ्फिर अनकुम जो है ना इसका निचोड़ है, इनफाक तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। फायदा क्या होगा, तुम्हारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। तो इससे ये पता चलता है जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, परेशानी आए, कोई दुख आए, कोई गुनाह हो जाए, कोई पता हो कि मुझसे ये गलती हो गई है, तो फौरन सदका करना चाहिए। अल्लाह ताला उसे गुनाह मिटा देते हैं, खत्म कर देते हैं, मुश्किल आसान कर देते हैं। वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को बहरहाल इसकी खबर है। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, लोगों को हदायत बख्श देने की जिम्मेदारी तुम पर नहीं है, हदायत तो अल्लाह ही जिसे चाहता है बख्शता है। अब उस वक्त हालात क्या थे कि बहुत से लोग जो थे मुसलमान नहीं हुए थे, और सहाबा के दिल में ये सवाल पैदा होता था कि इनको इन पर पैसे खर्च करें कि नहीं करें। तो बाज़ औक़ात जो है वो ऐसा होता था कि जो गैर मुस्लिम थे उन पर खर्च करना जो था वो मुश्किल लगता था। वो समझते थे सिर्फ मुसलमान मोहताजों पर खर्च करना चाहिए, उनके अपने ही जो गैर मुस्लिम रिश्तेदार थे या गैर मुस्लिम मोहताज थे उन पर वो खर्च करने में तामुल करते थे। इब्तदाई दौर की ये बात है। तो उस वक्त जो है अल्लाह ताला ने ये आयतें नाजिल कर दी कि लोगों को हदायत उनके दिलों में उतार देने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा काम था हक बात पहुंचाना, वो तुमने पहुंचा दिया, अब अल्लाह का काम है उनको हदायत दे या ना दे। रही दुनिया के माल की बात, तो उनकी हाजतें पूरी करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तुम अल्लाह की रजा के लिए उनकी हाजतमंदें उनकी हाजतों को पूरा करोगे तो अल्लाह तुम्हें इसका जो है ना वो अजर देगा। क्या फरमाया, लैसा अलैका हुदाहुम, हदायत की जिम्मेदारी तुम पर नहीं है, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है हदायत देता है। फमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम, और जो कुछ भी तुम नेकी करोगे, सदका करोगे, खैरात में से माल खर्च करोगे, तुम्हारे अपने ही भले के लिए है। हजरत असमा रजी अल्लाह अन्हा जो है इनकी गैर मुस्लिम जो थी वो वालदा, जब इनसे मिलने के लिए आई तो इन्होंने भी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं क्या करूं, तो कहा कि नहीं तुम सदका करो, दो उसको, यानी उनके ऊपर जो है वो अपना माल जो है वो खर्च करो। और मकसद क्या होना चाहिए, वमा तुनफिकू ना इल्ला इब्तिगा वजहिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए। क्यों, वमा अजरिया इल्ला अल्लाह, अजर तो अल्लाह से लेना है, तो उन पर भी खर्च जो है वो करना चाहिए। तो आप देख लें कि गैर मुस्लिम जो थे उनकी भी जरूरतें प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो पूरी करते थे। एक यहूदी आपका मेहमान बना, आपने कितनी मेहमान नवाजी की उसकी, कि उसका पेट ही खराब हो गया, उसने इतना खाया है ना। तो हम तो अपनों को नहीं खिलाते, गैरों को कहाँ खिलाएंगे। तो यहां पर जो बात बताई जा रही है वो क्या है कि जो भी गैर मुस्लिम है उनको भी सदका देना चाहिए, लेकिन ज़कात नहीं दे सकते, नफली सदका दे सकते हैं। हाँ अगर कोई न्यू मुस्लिम है और उसकी तालीफ़ कल्ब के लिए ज़कात में से दिया जा सकता है, लेकिन अमूमी तौर पर नहीं। और जो भी खर्च करें अल्लाह की रजा के लिए खर्च करना चाहिए। फमा तुनफिकू मिन खैरि युवफ्फा इलैकुम, तो जो माल भी तुम जो है वो खर्च करते हो जब अल्लाह की रजा के लिए करते हो तो क्या है कि अल्लाह तुम्हें इसका पूरा पूरा अजर देगा, पूरी पूरी वफा की जाएगी तुमके साथ। वान तुम ला तुज़लमून, और तुम्हारी हक तलफी जो है वो नहीं होगी। तो यहां पर जो बात बताई जा रही है वो क्या है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का बड़ा अजर है, इसका बड़ा मकाम है। और जब भी तुम किसी हाजतमंद की हाजत को पूरा करोगे तो अल्लाह तुम्हें इसका जो है वो बदला देगा। इससे एक बात पता चलती है कि जब हम किसी का फैला हुआ हाथ देखते हैं तो हम समझते हैं ना कि फलाह हमसे मांग रहा है, तो हम ये भूल जाते हैं कि फकीर का हाथ अल्लाह का हाथ है। कोई पानी मांगता है, कोई खाना मांगता है, कोई पैसा मांगता है, जो उसकी जरूरत होती है दरअसल इंसान अल्लाह को देता है। हम ये भूल जाते हैं अल्लाह ताला के, वो है ना हदीस के जब कयामत होगी हशर होगा तो अल्लाह पूछेगा कि मैं भूखा था तूने खाना क्यों ना खिलाया, मैं प्यासा था पानी क्यों ना पिलाया, मैं बीमार था मेरी आदत क्यों ना की, है ना, मुझे मैं नंगा था कपड़ा क्यों ना दिया। इस तरह की बहुत सी हमें चीजें मिलती है, तो इंसान कहेगा कि अल्लाह तू तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तुझे कैसे हम देते। तो अल्लाह ताला कहेंगे फलां मेरा बंदा तेरे पास आया था, वो भूखा था, वो प्यासा था, वो नंगा था, फिर तुमने उसकी जरूरत जो थी वो पूरी क्यों ना की। तो ये जो गरीब मिस्कीन यतीम बेवा मोहताज लोग है ना, दरअसल इनके पास अल्लाह होता है। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं ना कि जब मैं यतीम से उसका बाप ले लेता हूँ तो मैं उसको डायरेक्ट अपनी निगरानी में ले लेता हूँ। अलम यजिद का यतीमन फआवा फवजद का दौलन फहदा, तो मैं उनका फिर वाली और निगरान बन जाता हूं, तो तुम फिर उनकी मदद क्यों नहीं करते, तुम उनकी जरूरियात जो है वो पूरी क्यों नहीं करते। और अगर तुम उनकी पूरी करोगे तो अल्लाह तुम्हारे साथ वफा करेगा, अल्लाह तुमको बहुत देगा और तुम पर जो है जरा भी जुल्म जो है वो नहीं किया जाएगा। लिल्फुकरा इल्लज़ीन उसिरू फी सबीलिल्लाही ला यस्ततीउन दरबन फिल अर्द, खास तौर पर मदद के मुस्तहिक तो वो तंगदस्त लोग हैं जो अल्लाह के काम में ऐसे घिर गए हैं कि अपनी जाती कस्बे माश के लिए, कि अपनी जाती जरूरियात जिंदगी के लिए, अपनी माश के लिए वो जमीन में कोई दौड़ धूप नहीं कर सकते, यानी जमीन में चल फिर नहीं सकते। यहां पर दरअसल जो है वो इससे मुराद कौन लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में घिर गए हैं या अल्लाह के रास्ते में काम करने में इतने मसरूफ हैं कि अपनी जॉब अपनी कमाई अपनी मुआश के लिए उनको वक्त नहीं मिलता। मुफस्सरीन कहते हैं कि इससे मुराद वो लोग हैं जो अल्लाह के दीन की खिदमत में अपने आप को हमातन वक्त कर देते हैं और सारा वक्त अपनी दीनी खिदमत में सर्फ कर देने के बाद इस काबिल नहीं रहते कि अपनी जॉब या माश पैदा करने के लिए कोई जिद्दोजहद कर सकें। और ये वो लोग हैं जो दीन के इल्म के लिए खावो खुद सीख रहे हों या सिखा रहे हों या किसी भी दूसरे काम के लिए उन्होंने अपने आप को जो है वो वक्फ कर रखा हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी एक ऐसा स्टैंडिंग ग्रुप था रजाकार लोगों का, वॉलंटियर्स का, जिनको असहाबे सुफा के नाम से याद किया जाता है। वो असहाबे सुफा के नाम से मशहूर थे। ये तकरीबन 300-400 आदमी थे जो अपने घर बार छोड़कर मदीने आ गए थे। हम वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, हर खिदमत के लिए तैयार रहते थे। जिस भी मुहिम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते इन्हें भेज देते, और जब मदीने से बाहर कोई काम ना होता तो उस वक्त ये क्या करते, मदीना के अंदर रहकर दीन का इल्म हासिल करते और जो दूसरे लोग थे बंदगाने खुदा उनको दीन के इल्म की तालीम देते थे। और चूंकि ये लोग पूरा वक्त जो थे वो दीन की खिदमत करते थे, पूरा वक्त देने वाले कारकुन थे, तो अपनी जरूरियात फराहम करने के लिए फिर इनके पास कोई जाती वसाइल भी नहीं थे। कोई जैसे होता है ना कि जॉब के लिए वक्त हो, तो जब हर वक्त काम ही अल्लाह के दीन की खिदमत का करना है तो फिर इनके पास कोई वक्त था ही नहीं। तो ऐसे में अल्लाह ताला ने आम मुसलमानों को ये तवज्जो दिलाई कि खास तौर पर इनकी मदद करना इन्फाक फी सबीलिल्लाह का बेहतरीन मसरफ है। जैसे आप देखें कि پیچھے یہ ہمیں ذکر ملتا ہے، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے کہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنا ہے تو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے. کبھی ہمیں جو ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب تم خرچ کرو تو والدین کے اوپر کرو، رشتہ داروں پر کرو، یتیموں پہ کرو، مسکینوں پہ کرو، بیوہ پہ کرو، ہے نا. یہ سلونا کا ماذا ينفقون کی جب آیتیں آتی ہیں بار بار کہ وہ تجھ سے پوچھتے ہیں، تو مختلف ہمیں ملتے ہیں جس میں فقیر بھی ملتے ہیں، ضرورت مند بھی، مسکین بھی، محتاج بھی، اللہ کے راستے میں بھی. تو اب یہاں پر بھی ابھی آپ نے پڑھا کہ فقراء کے لیے خرچ کرو، تو حل فقراء فہو خیر لکم، آیت 271 میں پڑھا نا آپ نے. تو اب خاص طور پر کہا کہ فقراء کے لیے تم خرچ تو کرو، لیکن کون سے فقراء خاص طور پر جن کو خرچ، جن پہ خرچ کرو گے تو زیادہ اجر ملے گا، تو وہ والے ضرورت مند. اب اس کا مطلب فقیر سے مراد وہ نہیں جو ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے، جو ہاتھ پھیلاتا ہے نا اور جو در در دروازہ کٹکھٹاتا ہے، در در جاتا ہے، اگر اس کو ایک جگہ سے نہ ملے وہ دوسری جگہ جاتا ہے، ایک دروازے سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، وہ 10 دروازے کٹکھٹاتا ہے نا. تو کہتے ہیں نا ایک دروازے پر جو ہے وہ فقیر جو ہے وہ نوک کرنے کے لیے آیا. یہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کا ایک دفعہ میں ایک پروگرام سن رہی تھی، تو اس میں یہ ان کو بھی کسی نے گولی مار کر شہید کر دیا تھا نا، انوار القرآن انہوں نے لکھی ہے اور بھی بہت سی ان کی کتابیں. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے دروازے پہ فقیر آیا، تو میں جو ہے وہ کہنے لگا کہ تم تو وہی ہو جو ٹی وی میں درس بھی دیتے ہو. یعنی اس کے گھر ٹی وی تھی، اس کے گھر ٹی وی تھی، لیکن وہ دروازہ کھٹکھٹا کے پیسے مانگ رہا، کچھ ضرورت مانگ رہا تھا. تو کہنے لگا تم تو وہی ہو جس کو میں ٹی وی میں بھی دیکھا ہے مولوی. تو اب آپ دیکھ لیں کہ جو فقیر ہیں ان کی تو ان کے پاس بھی باقاعدہ گاڑیاں ہیں، سیل فون ہیں، ان کی باقاعدہ گروپنگ ہے، یہ باقاعدہ جو ہیں یہ آرگنائز ہے، پیشہ ور ہیں، اور باقاعدہ ان کو صبح جب ہوتا ہے نا گاڑیوں میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کہاں کہاں کس کس نے بیٹھنا ہے، ان کے اڈے مقرر ہیں اور انہوں نے خود ہی اپنی ایک حالت بنائی ہوئی ہے نا. تو ایک تو اس طرح کے فقیر ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، ایک گھر سے دوسرا گھر، ایک دروازے سے دوسرا دروازہ. اب یہاں پہ جن کا ذکر ہو رہا ہے اس سے مراد جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے، جو ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، جو اپنے جھولی کو نہیں پھیلائیں گے کہ مجھے میری مدد کر دو. بڑے خوددار لوگ ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں. تو اب اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خاص طور پر مدد کے مستحق تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کو جاب یا کچھ بھی کرنے کا جو ہے وہ موقع نہیں ملتا. لَا يَسْتَطِيعُونَ دَرْبًا فِي الْأَرْضِ، درب کے لفظی معنی تو یہ تھے نا کہ مارنا، اس کی گردان بھی آپ نے خوب اچھی یاد کی، لیکن اگر دربن فی الارض آئے نا تو اس کا مطلب ہے کہ زمین میں چلنا پھرنا، چل پھر، دوڑ دھوپ کرنا، جیسے قصب معاش کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جہاد کے لیے نکلنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، کہ ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں رہتا نا. اور مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی قرآن کی کہ یا سب الجاہل اغنیا من التعفف، کہ ان کے اندر اتنی خودداری ہے، ان کے اندر اتنی حیا ہے کہ نواقف، جاہل سے مراد وہ جاہل نہیں مطلب نواقف، جس کو سمجھ نہیں ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو غنی ہے، یہ تو امیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہے وہ ضرورت مند. تعرفہم بسیماہم، تم ان کے چہرے کو اگر دیکھو تو ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، تم ان کی آنکھوں کو دیکھو، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، ان کی سفید پوشی سے دھوکہ نہ کھا جانا، بلکہ کیا ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے چہرے کو، ان کے حالات کو تم سٹڈی کر سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، اور پھر ان کی ضروریات کو پورا کرو، جو مانگتے نہیں ہیں لیکن ہیں ضرورت مند، تو ان کو دینے کا جو ہے وہ بہت اجر ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ ان کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ سوال نہیں کرتے، دینی مشغولیات میں مصروف ہیں، کوئی دنیا کے کاموں میں نہیں، کوئی برے کاموں میں نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ فی سبیل اللہ وہ میرے راستے میں مصروف ہیں، اب ان کی ضروریات پوری کرنا ہے مسلمانوں تمہارا کام ہے، وہ میرا کام کرتے ہیں اور ان کی اگر تم خدمت کرو گے، ان کی کفالت کرو گے، ان کی ضروریات پورے کرو گے، تو کیا ہے کہ گویا کہ تم نے میری ضروریات پوری کی. تو یہ بہت اہم بات ہے، ہمیں وہ تمام لوگ جو دینی خدمات میں دن رات مصروف رہتے ہیں اور उनके अंदर ये खूबी भी होती है कि वो ये नहीं चाहते कि किसी के से अपनी जरूरियात या अपनी मसाइल या अपनी परेशानियों का रोना रोते रहें, क्योंकि दीनदार लोग होते हैं, तो उनकी जरूरियात को पूरा करना, उनकी जरूरियात का ख्याल रखना, तो इसका जो है हमें क्या है कि बहुत जो है वो इंशाल्लाह अजर मिलेगा। क्योंकि एक आम शख्स उनको ये समझता है कि वो अमीर है, वो गनी है, वो खुशहाल है, मगर जो है वो उनके चेहरों से तुम पहचान सकते हो। ला यसअलून अन्नासा इल्हाफा, ये ऐसे लोग नहीं है कि लोगों के पीछे पड़कर उनसे कुछ मांगे, वो लिहाफ नहीं बन जाते, वो कंबल नहीं बन जाते, वो चिपक नहीं जाते। जैसे आम जो फकीर होते हैं, बैगर्स होते हैं, वो तो पकड़ लेते हैं आपको, छोड़ते नहीं है कि दे दे दे, आप दे दें, तो अगर आप ना दें तो छोड़ते ही नहीं है। तो क्या है कि वो लिपट कर नहीं मांगते, वो बड़े खुददार किस्म के लोग हैं। तो अब आप देखें कि सवाल न करना, लिपट कर ना मांगना, इसकी भी बड़ी फजीलत है। अबू सैयद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सवाल से बचे अल्लाह भी उसे बचाएगा, और जो कोई दुनिया में बेपरवाही करेगा अल्लाह भी उसे बेपरवाह कर देगा, और जो कोशिश से सब्र करेगा अल्लाह उसे सब्र देगा, और सब्र से बेहतर और कुशादा तर किसी को कोई नेमत नहीं मिली, ये बुखारी की रवायत है। फिर इसी तरह जो है वो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर कोई शख्स अपनी रस्सी उठाए और लकड़ी का गट्ठा अपनी पीठ पर लाद कर लाए, तो ये इससे बेहतर है कि जाकर किसी से सवाल करे और वो उसे दे या ना दे। ये भी बुखारी की रवायत है। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे इमिग्रेंट लोग आते हैं, बहुत अच्छे पीछे उनके हालात भी थे, लेकिन सब बेच बाज के वो जो सारे इमिग्रेशन के मसले मसाइल होते हैं, तो यहाँ पर जब आते हैं और यहाँ पे फिर जॉब नहीं मिलती, तो पीछे वाले तो समझते हैं कि वो जन्नत में पहुंच चुके हैं, और वो भी एड़ियां उठा उठा के सोच रहे होते हैं कि वो जन्नत की बहारें हम पर कब आएंगी, या ये कि हम उस जन्नत को कब देखेंगे, उस जन्नत तक हम कब पहुंचेंगे। और यहाँ उनकी जो दरकत बन रही होती है, वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कंप्यूटर में मास्टर हैं, जो कुछ भी हैं वो जानते हैं और उनका खुदा जानता है ना। फिर उसमें क्या है कि बाज़ औक़ात अच्छी भली जो घराने में मुसलमान लोग होते हैं, बहुत अच्छे पीछे से भी उनकी इस्लामिक बैकग्राउंड होती है, फिर वो सोचते हैं कि निकला जाए सोसाइटी में, सारे लोग निकले, बाज़ औक़ात दीन का भी सौदा कर दिया जाता है, इस्लामी लिबास भी उतार दिया जाता है, बुर्का जिलबाब दाढ़ी भी कटवा दी जाती है, सारा कुछ, नमाजों का भी को खुदाफिस कहा जाता है, क्योंकि जो भी मसले मसाइल हैं जॉब्स के, तो एक एक करके इंसान सब चीजें छोड़ता चला जाता है अपने पेट को भरने के लिए। कुछ लोग तो नीड्स के लिए करते हैं, कुछ लोग अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, तो दोनों को सोचना चाहिए इस बात पर। और मैं ये समझती हूँ कि बजाय इसके कि हाथ फैलाया जाए, इसमें अगर औरत घर बैठकर कोई मेहनत करती है, कपड़े सीना शुरू कर दे, वो कि सारी जिंदगी नहीं सीए, अगर वो मिठाई बना लेती है गुलाब जामुन या रसमलाई, या वो घर बैठकर कैटरिंग करती है, कुकिंग करती है, या वो घर बैठकर कुछ ऐसी बाज ऐसी फैक्ट्रियां हैं वो चीज दे देती हैं कि आप उसको भर दें, लिफाफों में डाल दें, इन इस तरह की चीजें जिसमें इस्लाम जो है वो न जाए हाथ से, और रिस्क हलाल घर में आने लगे और मुआशी मसाइल हल हो जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि इंसान जो है वो दर दर का भिखारी बन जाए। और बाज़ औक़ात अगर जितना मिल रहा है उस पर गुजारा हो रहा है, तो कनात की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात जब कनात नहीं होती, सब्र नहीं होता, शुक्र नहीं होता, तो घर के सारे लोग भी घर से बाहर निकल जाए ना, तो फिर भी घर में बरकत नहीं होती, फैमिली सिस्टम भी मुतासिर होता है, इस्लाम भी मुतासिर होता है, हदें भी टूटती हैं, और फिर भी हम वो कुछ नहीं बन पाता जो हम चाह रहे होते हैं, और हमारे चाहने की कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई हदबंदी नहीं है। इसी तरह यानी सवाल ना करना या ना मांगना, बाज जैसे मर्द हैं और उनके अंदर मर्दानगी होनी चाहिए, होता है ना, फिर मांगने की आदत पड़ जाती है, बाज लोगों को कर्जा मांगने की फिर आदत पड़ जाती है, आज $5 कल $100 फिर $200, फिर उनको पता एक दफा हाथ पॉकेट से निकालना मुश्किल होता है, पहली दफा मांगना मुश्किल होता है, और जब पहली दफा वो उस दिन पसीना भी आता है, थोड़ी शर्म भी आती है, थोड़ी हया भी आती है, और फिर जब बंदा मांग लेता है फिर उसका वो हाथ बढ़ता चला जाता है, और फिर एक से मांगा, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, वो हर एक का कर्जा ही बनता चला जाता है और हर एक से मांगता चला जाता है। तो ऐसे में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से क्या पता चलता है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाली जो हमेशा लोगों से मांगता रहता है, हमेशा लोगों से मांगता रहता है, कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि इसके मुंह पर गोश्त की एक बोटी भी ना होगी। इसे बुखारी ने रवायत किया है। फिर इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को मिंबर पर सदका और सवाल से बचने के लिए खुतबा दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ऊपर वाले हाथ से मुराद खर्च करने वाला है और नीचे वाला हाथ मांगने वाला हाथ है। यह अबू दाऊद की रवायत है। फिर इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपना माल बढ़ाने के लिए लोगों से सवाल करता है वो आग के अंगारे मांग रहा है। अब चाहे तो वो कम करे या ज्यादा इकट्ठे कर ले। इमाम मुस्लिम ने इसको रवायत किया है। हजरत अंस रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, एक अंसारी ने आपके पास आकर सवाल किया। आपने उसे पूछा, तुम्हारे घर में कोई चीज है? वो कहने लगा, हाँ एक ताट और एक प्याला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों चीजें मेरे पास ले आओ। वो ले आया तो आपने इनको हाथ में लेकर फरमाया, कौन इन दोनों चीजों को खरीदता है? एक आदमी ने कहा, मैं एक दिरहम में लेता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिरहम से ज्यादा कौन लेता है? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात दो तीन बार दोहराई तो एक आदमी कहने लगा, मैं इन्हें दो दिरहम में खरीदता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो दिरहम लेकर वो चीज इस आदमी को दे दी, मतलब वो चीजें इस आदमी को दे दी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंसारी को एक दिरहम देकर फरमाया, इसका घर वालों के लिए खाना खरीद और दूसरे दिरहम से कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास लाओ। जब वो कुल्हाड़ी ले आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इसमें लकड़ी का दस्ता ठोंका, फिर इसे फरमाया, जाओ जंगल से लकड़ियां काट कर यहाँ लाकर बेचा करो और 15 दिन के बाद मेरे पास आना। 15 दिन में इस शख्स ने 10 दिरहम कमाए। चंद दिरहमों का कपड़ा खरीदा, चंद का खाना और असूदा हाल हो गया। 15 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तेरे लिए इस चीज से बेहतर है कि कयामत के दिन सवाल करने की वजह से तेरे चेहरे पर बुरा निशान हो। तो आप सोच लीजिए कि मतलब अगर एक ऐसा शख्स जिसके घर का कुल असासा एक टाट और एक प्याला हो, और क्या उसके मोहताज होने में कोई शक रह जाता है? लेकिन चूंकि वो माजूर नहीं था, वो कवि था, वो कमाने के काबिल था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुछ देने की बजाय उसको मेहनत करने की जो थी ना वो तजवीज दी। फिर उसे इज्जत नफ्स का सबक भी दिया कि कस्बे हलाल, मेहनत की अजमत, इसकी बड़ी अहमियत है। तो चंद दिनों बाद ही वो असूदा हाल हो गया। तो ये था आपका अंदाज तरबियत और ये था आपका तज़किया। अच्छा, आप में से ही बहुत से लोग हो सकते हैं बेवा की और यतीमों की और जिनको जॉब नहीं मिली उनकी कफालत करते हो। मैं ये नहीं कहती कि आप ना करें, एट द सेम टाइम आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप बेवा को एक मशीन लेके दे दें। आप उसको हर महीने देती हैं, उसको मशीन लेके दे और कहें आप कपड़े सीखें, उसको किचन की कुछ बात बताएं कि आप ये पका कर बेचना शुरू कर दें। मतलब उसके अंदर भी और भी, अगर वो मजदूर नहीं है, मजदूर तो फिर कर नहीं सकता ना, अंधा है या फिर वो बोल नहीं सकता या वो चल नहीं सकता या उसके जिस्म के अज़ा में कोई मसला है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी है, तो वो तो अलग बात है। लेकिन ये कि इस तरह सोसाइटी के अंदर, ये मुस्लिम सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि लोगों को प्रमोट किया जाए कि वो मेहनत करें, हिम्मत करें। औरतों की जिम्मेदारी है मर्दों को करना और उसके साथ साथ जो भी वो कर सकती हैं तो करना। तो यहाँ पर ये नहीं है कि किसी से सवाल किया नहीं जा सकता, यानी इसका ये मतलब तो नहीं है, पसंदीदा नहीं है कि ऐसा किया जाए। अगर कोई जरूरतमंद है तो वो सवाल कर सकता है, लेकिन बेहतर है कि वो अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए खुद कफील हो जाए। और वो पसंदीदा है, जरूरतमंद है और सवाल नहीं करते, और सोसाइटी बिना उनके सवाल किए उनकी जो है वो जरूरत पूरी करे, तो उसी के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि उनको दो तो ज्यादा अच्छी बात है कि तुम्हें खुद भी अंदाजा होता है और हमें खूब अच्छी तरह पता होता है। बाज आप अपने बहुत से दोस्त हैं, स्टूडेंट हैं, क्लास फेलोज हैं या रिश्तेदार हैं, आप आते जाते हैं, उनको आपको पता होता है कि उनके हालात बड़े तंग हैं। आप उनसे पूछे कैसे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। घर के हालात कैसे, अनिया कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे दिन बाजी गुजर रहे हैं। बहुत मजा आता है ऐसे लोगों से मिलकर, जरूर मिलना चाहिए, अपना ईमान भी जो है वो बढ़ता है। तो यहां से एक तरफ हमें ये बात पता चलती है कि हमें क्या करना चाहिए और दूसरी तरफ जो है हमें ये बात भी पता चलती है कि हमारी जो है वो क्या जिम्मेदारी बनती है। फिर फरमाया, वमा तुनफिकू मिन खैरिन फइन्नल्लाह बिही अलीम, उनकी मदद में जो कुछ माल तुम खर्च करोगे वो अल्लाह से पोशीदा नहीं रहेगा। तो अब यहां पर जिस चीज की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है वो ये है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे जो जरूरतमंद हैं, तुम उनकी जरूरियात के लिए जो कुछ भी करोगे तो अल्लाह ताला को उसका जो है वो खूब इल्म है। तो खुदार साइलों को तलाश करना, खुदार साइलों को, सफेद पोशों को तलाश करना और चुपचाप देना, ऐसे देना दाएं हाथ से कि बाएं को खबर ना हो। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम ये काम करोगे, खल्क से पोशीदा रहे, खालिक से पोशीदा नहीं रहेगा, दुनिया से छुपा रहे लेकिन अल्लाह से छुपा नहीं रहेगा, वो तुम्हारे हर इन्फाक से बाखबर है। और तुम क्यों परेशान होते हो, तुम्हें वो इसका भरपूर सिला देगा। पीछे आपने पढ़ा था ना खुफिया नेकी की फजीलत, तो ऐसे लोगों को जब तुम दो तो इतने अच्छे तरीके से देना कि उनकी इज्जत नफ्स जो है ना वो मुतासिर ना हो, और उनको इतने अच्छे तरीके से देना कि वो लोग जो हैं वो दुनिया के सामने जलील और रुसवा ना हो। तो लेकिन ये कि जो कुछ भी तुम खैर में से करोगे, अल्लाह ताला उसको जो है वो खूब जानता है। और हमें बहुत सी ऐसी अहदीस मिलती हैं जिनसे ये बात जो है वो पता चलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे जो गरीब मिस्कीन और जरूरतमंद लोग हैं उनकी जो मदद करते हैं उसका अजर कितना है, जैसे बेवा के सर पर दस्ते शफकत रखने वाला, मिस्कीन की मदद करने वाला, यतीम के सर पर, आपने फरमाया ना कि जन्नत में वो मेरे साथ होगा, तो उनको बहुत कुछ मिलेगा। दूसरी बात हमें ये भी पता चलती है कि ऐसे लोग जिनके पास बजाहिर हमें ये लग रहा है कि बहुत कम है, तभी तो वो सफेद पोश है ना, जरूरतमंद है, लेकिन वो अमीर लोगों से बहुत 100 साल पहले वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। क्यों जन्नत में दाखिल वो पहले होंगे? क्योंकि उनके पास था ही थोड़ा, जब उनके पास थोड़ा था तो उनको हिसाब किताब जो था उसमें कोई देर ना लगी। और जो अमीर लोग हैं वो दाखिल होने से पहले क्या करेंगे, वो हिसाब किताब करेंगे, उनको अल्लाह ताला को तमाम नेमतों का जो है वो हिसाब देना होगा। तो इस सिलसिले में भी हमारी मतलब ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बात पर सोचें कि अगर अल्लाह ताला ने किसी को खूब दिया है तो वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो और हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हो और उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो की तरह किरदार अदा करें कि अमीरी में फकीरी करना और अल्लाह के रास्ते में खूब देना और अल्लाह का शुक्र अदा करना। और दूसरी बात ये पता चलती है कि जिसको अल्लाह ने कम दिया है तो उसमें भी वो परेशान ना हो, क्योंकि मोमिन हर हाल में खैर ही खैर जो है वो समेटता है। अगर उसको मिलता है ज्यादा तो वो शुक्र करता है, और अगर उसको कम मिलता है तो वो सब्र करता है। तो मोमिन जो है वो तो ऐसा है कि उसको किसी हाल में भी जो है ना कोई परेशानी नहीं है, कोई भी मसला नहीं है। और जो खर्च करने वाला है उसके लिए भी अल्लाह ताला कहते हैं कि जो कुछ भी तुम करोगे, दुनिया ना जाने अल्लाह तो जानता है ना। फिर फरमाया अल्लज़ीना युन्फिकून अमवालहुम बिललैली वन्नहारि सिर्रन वअलानियतन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अपने माल दिन और रात खुले और छुपे खर्च करते हैं, इनका अजर इनके रब के पास है और उनके लिए किसी खौफ और रंज का मकाम नहीं। मगर अब यहां पर भी जो बात है वो बहुत अहम है कि एक तरफ पिछली आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि मैं जानता हूं, मुझे पता है ना, मैं अलीम हूं कि तुम क्या खर्च कर रहे हो, किस तरह खर्च कर रहे हो। दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के अजीम अजर का जिक्र किया, उनकी फजीलत का बयान किया जो अल्लाह की राह में खर्च करने के आदी हैं। तमाम हालात में वो खर्च करते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात, ना सुबह देखते हैं ना शाम, ना वो ये देखते हैं कि हमें अलानिया कर दिया तो यही काफी है, खुफिया खुफिया करते हैं तो अलानिया भी करते हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि सदका खैरात के लिए वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए, वो के रमजान में खर्च करना बहुत अजर का जरिया है, कई गुना हमें अजर मिलता है, लेकिन बाकी 11 महीने अगर कोई जरूरतमंद है तो अपने हाथों को पॉकेट में डाले रहेंगे, फिर हम नहीं खर्च करेंगे, है ना। तो बाकी महीने भी जो है वो खर्च करना है हमें, ना दिन देखे ना रात। और जब भी खर्च करें तो कैसे खर्च करें, अल्लाह के लिए करें ताकि अल्लाह उसका जो है वो अजर अता करे। फिर इसमें जो है वो ये बात भी हमें पता चलती है कि हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में 40,000 दिनार उन्होंने अल्लाह की राह में फिर खर्च किए, इस तरह खर्च किए कि 10,000 दिन में, 10,000 रात में, 10,000 खुफिया और 10,000 अलानिया। और बाज मुफस्सरीन कहते हैं कि ये आयत जो थी ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बारे में नाजिल हुई। اور اس کے شان نزول کے متعلق اور بھی بہت سے ہمیں اقوال جو ہیں وہ ملتے ہیں، لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ صحابہ یہ چاہتے تھے کہ کیسے عمل کریں نا، تو ایک تو یہ ہے نا کہ آیت سامنے ہے تو اس پہ عمل کرنا ہے، اور ایک یہ کہ عمل اتنا خوبصورت کیا کہ وہی نازل ہو گئی، وہی نازل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ پھر سوچو کہ ان کو اجر اللہ دے گا، اور لوگوں کو، لوگوں سے تم اجر چاہتے ہو، اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں رہتی دنیا تک جو ہے نا قرآن میں یہ بات لکھ دی، فلاحم اجرہم عند ربہم، کہ ان کا اجر جو ہے ان کے رب کے پاس ہے، اور اجر کیسا ہے کہ اب جو کچھ انعام ملنے والا ہے 700 گنا، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان کے لیے اب نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی ان کے لیے جو ہے نا کوئی رج کا مقام ہے. ہم پیسے کیوں جمع کرتے ہیں؟ ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے حالات پیدا ہو جائیں گے، ہم فقیر نہ ہو جائیں، جاب نہ چھوٹ جائے، بچوں کی شادی کا کیا ہوگا، تعلیم کا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقین رکھو جب تم خرچ کرو گے کئی گنا بڑھا کر اللہ دے گا، تمہارے رزق میں برکت دے دے گا، اور کیا ہے کہ کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. تو یہ سب آیات جو ہیں ہمیں یہ توجہ دلاتی ہیں کہ ہمارے اندر انفاق کے سلسلے میں جوش آنا چاہیے، اور یہ نہ ہو کہ عقل سے حساب کتاب کرتے ہیں، ہوش میں رہیں اور جمع تفریق کرتے رہیں اور پھر خرچ ہی نہ کریں. تو یہ انفاق کے سلسلے کی جو ہے یہ آیات ہمیں یہ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جسمانی صلاحیتیں دی ہیں، ایک مالی جو دی ہیں، تو جسمانی صلاحیتوں میں بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے، جس میں روزہ بھی آتا ہے، نماز بھی آتی ہے، حج بھی آتا ہے، جو کہ حج میں ہمیں پیسے بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مال جو اللہ کی امانت ہے نا، اس کو اللہ کی امانت سمجھ کر جو اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے. اور یہ جو سبق ہے اس کا آغاز بھی اسی طرح سے ہوا تھا کہ اگر تم میرے راستے میں دو گے تو میں اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر دوں گا. تو یقین ہونا بہت ضروری ہے کہ ہاں ہمیں اللہ جو ہے وہ دے گا اور کئی گنا دے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی بہترین توفیق جو ہے وہ عطا کرے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا نستغفرک ونتوب الیک.